872-4900, Montreal 514-907-6288. इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com, लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
जी साहब, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तो डॉक्टर रवि गोयल साहब का है, मगर मैं आरफा मुजफ्फर आपकी खिदमत पे हाजिर। होता यह है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से खूबसूरत लोग हैं, हम उनके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते, जानते नहीं हैं कि वो कितनी खूबसूरत शख्सियात हैं। मैं लास्ट वीक डॉक्टर साहब का प्रोग्राम सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह करे कि मैं और आप इतने बड़े दिल वाले हो जाएं कि हम दूसरे को इज्जत और कदर दे सकें। तो मैंने दिल में सोचा कि वाई नॉट टू एक्सप्लोर डॉक्टर रवीज पर्सनल लाइफ, उनकी तालीम, उनके पेरेंट्स, यकीनन एक अच्छे वालदैन। जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं तो उस इंसान की बातचीत से पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि किस गोद में उस शख्स ने परवरिश पाई, कौन उसके फ्रेंड्स रहे, क्योंकि बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, हमेशा से ये एक हकीकत है। डॉक्टर रवि गोयल का ही प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है, मगर मैंने आज जसारत की कि मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ डॉक्टर रवि साहब के बारे में जानने के लिए, और मुझे खुद इतनी बेहतरीन मालूमात मिली, मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। डॉक्टर रवि,
हाँ जी,
गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू टुडे? थैंक यू वेरी मच।
फाइन, थैंक यू वेरी मच अरफा जी। मैं तो आई एम रियली शॉक्ड कि आपके आगे मैं बैठा हूँ, क्योंकि आप तो इतने, यू आर सो एक्सपर्ट।
डॉक्टर साहब, आज तो आप ही की बात
नहीं, आपकी बात नहीं, पर लेट मी स्पीक समथिंग, यू नो, आपने मुझे मेरे बारे में कहा है, क्योंकि जब भी मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक या सुनने वाले हैं उनको पता है कि आपके, आपसे ही शुरू होता है प्रोग्राम जब मैं बताता हूँ। अब मैं वो रियल स्टेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये आज मैं ये सभी को बता रहा हूँ कि जो मेरे सामने बैठे हैं उनके बारे में ही बात करता हूँ कि इट्स ऑल बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा कि शी हैज ए फुल कंटेंटमेंट। ये स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है और इसमें, इनमें फुल कंटेंटमेंट है, पैसे के पीछे भागना, जो आज मैंने एक्चुअल टॉपिक करना था ना कि ऑनेस्ट लिविंग, हक हलाल की कमाई, उसमें इनकी भी एग्जांपल थी, लेकिन आज प्रोग्राम का खैर चेंज
अच्छा,
हो गया।
डॉक्टर साहब नहीं छोड़े मेरी बात, आज तो आज हमने आप ही के गिर्द घूमना है। डॉक्टर साहब, आपने रवि आपका नाम था, मैं थोड़ा सा आपके वालदैन के बारे में पूछती हूँ। मुझे जहाँ तक मालूम हुआ कि वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, योर मदर एंड फादर, थोड़ा सा आप हमें उनके बारे में बताएंगे और अपने भाई बहनों के बारे में।
हाँ जी, अरफा जी, ऐसी है कि मैं, मेरे जो फादर थे ना, एक्चुअली जो हमारी फैमिली थी, दैट इज ए फ्रीडम फाइटर, वो अंग्रेजों के साथ उन्होंने जेलें भी काटी हैं, काफी कुछ काटा है। तो मेरे चाचा जी ज्यादा एक्टिव थे, उनका वो स्टैचू भी लगा हुआ शहर में, तो लेकिन वो जो फ्रीडम फाइटर थे, एक्चुअल वो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जो अनकंडीशनल कंट्री के लिए सेवा करते थे। आजकल तो सेवा जो करो उसके साथ मेवा भी चाहिए, 10% सेवा करो, 90% मेवा रखो, लेकिन वो एग्जाम्पल होती थी कि जो भी हमारे शहर में, आई बिलोंग टू बरनाला, वो अब डिस्ट्रिक्ट है, तो उस शहर में हूँ, तो वहां पर जो पेरेंट्स थे वो ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी जायदादों वाले बन गए, उनकी रिस्पेक्ट थी। इवन हमारे कंट्री में जो ज्ञानी जैल सिंह थे, जब वो होम मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जब भी वो आते थे कभी घर में, तो वो कभी उनके साथ नहीं बैठते, वो कहते मैं नीचे बैठूंगा, क्योंकि उनको वैल्यूज पता थी कि आपने जेलों में कितना कष्ट उठाया है, तो वो सब उनकी देन है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे में भी जीन्स आ गए, लेकिन वो तो 100% तो नहीं आए, हम तो हेरा फेरी भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो सच्चे देशभक्त थे, जो हम कह सकते हैं मेरे मदर का रोल भी था। ऑफकोर्स जाता तो एक जेल में है, लेकिन पूरी फैमिली उसके बीच में इन्वॉल्व
प्राइस पे करती है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर वालदैन की तरबियत अच्छी होती है तो अगर फौरी तौर पर नहीं तो लेटर ऑन बच्चों में माँ बाप का अक्स या उनका रंग नजर जरूर आता
है।
पेरेंट्स ने इंडिया की आज़ादी में फ्रीडम फाइटर्स के साथ काम किया, 65 में जब मैं आपके बारे में देख रही थी कि यू आर वेरी यंग, पांचवी जमात में थे जब 65 की वॉर लगती है, तो आपने फंड रेज इकट्ठा किया था और यू गॉट द अवार्ड अपने मुल्क की हेल्प के लिए या जिन लोगों को जरूरत थी उनकी हेल्प के लिए. तो इसका मतलब है माँ बाप की तरबियत का अक्स था कि आप बचपन से ये चीज बिल्ट इन थी टू सपोर्ट द नेशन एंड टू सपोर्ट द कॉज.
हाँ जी अरफा जी, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. इसके बीच में तो नहीं है
जी.
जब 65 में वो हमारी लड़ाई यंग हुई तो मैं मूली वगैरह बेचकर फंड इकट्ठा करता था. तो मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा बोल्ड था शुरू से. तो मैं म्यूनिसपैलिटी जो हमारी होती है यहाँ पर सिटी कहते हैं, तो बाप का जो प्रेसिडेंट था वो मेरे फादर को तो जानता ही था. मैं उनके पास चला गया कि मैं फंड इकट्ठे कर रहा हूँ तो आप एक मूली ले लो तो मुझे जो कुछ देना दे दो. तो वो शरारती थे वो, ऑफकोर्स मैं तो बच्चा था. वो कहते ऐसे करो अगर ज्यादा देशभक्ति है तो अपना मुझे एक शूज दे दो. मेरे फ्लीट डाले हुए थे वाइट, तो एक शूज दे दो तो मैं 20 रुपए दे देता हूँ. 20 रुपए से बिग मनी. तो मैंने सोचा, शरारती तो था, मैंने सोचा भी 20 रुपए इनसे ले लेते हैं, 2 रुपए के बूट आएंगे तो 18 रुपए चंदे में डाल देंगे.
वाओ.
तो मैंने वो उनसे 20 रुपए ले लिए. तो उन्होंने कहा कि ये बूट यहाँ पर निकाल दो. मैंने एक शूज रख दिया. जब मैं घर गया तो मेरे फादर ने कहा कि एक शूज कहाँ पर है. मैं डर गया क्योंकि फादर का तो उस टाइम बहुत डर था. मैंने कहा मैं खेल रहा था ग्राउंड में, कोई उठा कर ले गया. वो कहते चल अभी सुबह हेडमास्टर के पास जाएंगे. तो वो मुझे ले गए. तो हेडमास्टर को बोलते हैं कि ये चोरी कहाँ से होने लगी, जब खेलता था मेरा बेटा तो शूज को उठा कर ले गया. वो हंस पड़ा. वो कहता मेरे फादर को कामरेड कहते थे, कामरेड साहब इसका कोई नहीं उठा कर ले गया, ये शू ये पड़ा है, वो प्रेसिडेंट साहब ने दिया है, इन्होंने 20 रुपए लिए हैं, लेकिन देशभक्ति इसको कूटना मत.
वाओ.
तो आप झूठ भी बोला है लेकिन वो गुड कॉज के लिए,
गुड कॉज के लिए. डॉक्टर साहब, मैं जब आपके बारे में देख रही थी कि आपने उसके बाद फिर अपना जो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया ऑनर्स के साथ किया, सो दिस मीन कि आप वॉलंटियर वर्क करते हुए अपनी तालीम में बड़े फोकस थे.
तालीम में तो नकल मारता था जी मैं, ऑनेस्टली बता देता हूँ. पढ़ने पढ़ने वाला तो मैं ऐसा ही था, है ना. पर्चियां बना लेते थे, वो थोड़ी सी लीडरी थी स्टूडेंट यूनियन में. हाँ, लेकिन जो ऑनर्स की है वो पॉलिटिकल साइंस की है. जब मैंने एक्चुअली हमारे पास एक केस भी बन गया था, 2 साल इसलिए लेट हो गए. तो वो जो ऑनर्स थी वो पॉलिटिकल साइंस में थी. तो उसमें उस टाइम जो कार्ल मार्क्स था, खास करके रेड बुक जो मऊजिंग की इंडिया में बैन थी, वो भी हमने पढ़ी है.
अच्छा.
क्योंकि वो क्योंकि लीगल था, हमारी सब्जेक्ट में था, तो उसको पढ़ा. लेकिन डरते थे कि पुलिस वालों को कभी पता चलेगा तो रात को फेंटा लगाएंगे बड़ा बड़ा, पकड़ कर वो कामरेड लोग हैं. लेकिन वो पढ़ा. लेकिन उसके लिए कामरेड जो एजुकेशन है, हमारी बैकग्राउंड है, वो भी बनी कि कैसे लोगों के साथ डील करना चाहिए, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे ड्यूटीज हैं. रशियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंग्लैंड का पढ़ा, जर्मन का पढ़ा, अमेरिका का पढ़ा. इंडिया का तो पढ़ ही नहीं सकते, इतना लंबा है, है ना.
सही.
तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा. वैसे मेरा 100% ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज भी मुझे जितनी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, एनी टॉपिक को इंग्लैंड का पूछो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था. लेकिन जो फिलासफी की, वो रब की बातें, आत्मा की बातें, वो तो फजूल थी उस टाइम. कौन रब के बारे में बात करता
आज भी कोई नहीं करना चाहता.
आज भी कोई नहीं करना चाहता, पर मेरे लिए आज काम आ गया क्योंकि कुछ बुक्स में पढ़ा और कुछ अपना प्रैक्टिकल तजर्बा किया. फिर मैंने देखा कि अल्टीमेटली फिलासफी की, रिलीजन की, जो स्पिरिचुअलिटी की है बेसिक, उनकी ही वैल्यू है.
सही. डॉक्टर साहब, अभी आपने जब जिक्र किया और अभी आपने बातों बातों में बताया कि 2 साल का गैप आ गया था, और मैं जब आपकी डिटेल देख रही थी तो ये गैप था कि मेरा ख्याल है उन कॉलेजेस के बीच में कोई चीटिंग का प्रोसेस चला था और उसके बाद लॉयर्स इन्वॉल्व हुए थे, और लॉयर्स भी कोई आम से नहीं थी, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स इन्वॉल्व हुए थे. और मीनवाइल फिर पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो जाती है, यू लॉस्ट दैट वॉर. तो क्या वो थोड़ा सा शेयर करेंगे?
हाँ जी, वो एक्चुअल ऐसे था जी, मैंने पहले ही बता दिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यही मेरा में प्लस या माइनस पॉइंट है. नकल मारते थे हम, देखो जी पढ़ाई में तो नहीं थे होशियार. तो जब हम ग्रेट मेकर 13 में थे तो वो पर्चियां होती थी, इंग्लिश तो आती ही नहीं थी कुछ भी, तो पर्चियां बनाकर ले गए और पर्चियां सारी क्लास के अंदर वही पर्ची थी.
अच्छा.
तो उसमें यूएमसी बोलती हैं, अनफेयर मींस केस, पूरी की पूरी जो हमारी कॉलेज की क्लास थी, उन्होंने देखा सभी का एक ही आंसर आ रहा है. तो हमारा कॉलेज नहीं, इसी तरह 2-3 कॉलेज और थे.
डॉक्टर साहब, किस सन की बात? आजकल 70 बहुत कॉमन है.
हाँ, 70 मेकअप 1 की बात है.
71 में 70. तो चीटिंग इतनी नहीं थी.
नहीं 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 चीटिंग तो बहुत ही कलरों में पर्ची लेकर जाना, हाथ पर लेकर जाना,
लड़कों में होती होगी. मेरा ग्रुप आपके बाद में आता है, मगर उतनी हमारे जमाने में
आप होशियार थे पढ़ने वाले. जो
नहीं नहीं नहीं
जिस जैसी कंपनी होगी वैसे ही पता चलेगा.
सबसे इतनी लड़के तो लंगे होते हैं. आपकी बेगम से पूछिएगा, उनके
उन्होंने नकल नहीं मारी कभी, कभी नकल नहीं मारी.
गर्ल्स आर मोर फोकस्ड.
फिर वो जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड था, उन्होंने पकड़ लिया, केस बना दिया. हमने भी मजारा वगैरह किया, तो सारे तीनों कॉलेजों के जो स्टूडेंट थे दो साल के लिए एक्सपेल कर दिए यूनिवर्सिटी ने.
अच्छा.
तो फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई, मैं उसमें वन ऑफ द मेजर रोल, दो लड़के और थे. तो फिर हमने हाई कोर्ट जो हमारी होती है स्टेट कोर्ट कहती है, उसमें केस कर दिया. तो जो दो जो जज हमारे वकील थे वो दोनों ही लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के,
पहले सीनियर मोस्ट लॉयर.
सीनियर मोस्ट.
तो हु पेड द फी?
फीस तो इकट्ठी की थी, उसमें से भी हमने थोड़ी सी हेरा फेरी की. हमें अब क्यों आप रेडियो पर बुलाते हो, जो फंड इकट्ठा हुआ है खर्चा खुर्चा भी खूब खा लेते थे, बीच में ही डाल देते थे. पर लेकिन रिस्की था क्योंकि 71 की वो वार लगी हुई थी. रात को जाना, गाड़ियां बंद होती थी, फिर चंडीगढ़ जाना पहुंचना. लेकिन अरफा जी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अदरवाइज इट्स ए वेरी इनजस्टिस फॉर मी. जब 71 में जाता था मैं महाकंजूस होता था, महाकंजूस. कैसे कि कॉलेज में जब समोसे खाने जाते थे तो जो हमारे ग्रुप के होते थे क्लास लगाएगा बीच में से आप निकल जाना, तो एक समोसा ले देना. और वो भी शरारती थे, उनको पता था ये खाली क्लास मिस किया है, ये समोसे खाने क्या होगा. तो वहां पर कंटीन में आ जाते, उसी समोसे का छोटा छोटा पीस देते थे ना, दिल को धक धक होती थी, ये खा गया ये खा गया. इतना कंजूस था. लेकिन वो चंडीगढ़ मेरी लाइफ में चेंज करने का जो इंसिडेंट हुआ, वो एक फ्रेंड थे जो मेरे साथ मेजर सिंह थे, उनके आगे फ्रेंड थे, वो लॉ कर रहे थे.
जी जी.
हम सुबह जब गाड़ी जाती थी हॉस्टल में पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते, तो वो हमें टॉवल भी देते, चप्पल भी देते, ब्रेकफास्ट भी करवाते. तो मैं सोचता रवि राम, तू तो यार समोसे की इतनी डली देने से तेरा दिल धक धक करता है, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो टॉवल भी दे रहा है, चप्पल भी दे रहा है, परौंठा भी खवा रहा है. दैट इज द डे. उसके बाद मैंने कभी परवाह नहीं की. मैं हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी भी रहा हूं, और हेरा फेरी करके मीट शराब जो भी कुछ खाया, लेकिन गेस्ट मेरे याद आते थे क्योंकि मैं कभी किसी को मना नहीं करता था. उसके बाद ही मेरा दिल जो कंजूस था सिरे का वो बड़ा हो गया, मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपना दिल खोलकर सभी की सेवा करता हूँ.
इन अदर वर्ड्स, दिस इज द कंपनी विच मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. कि कहाँ के आप मतलब शेयर नहीं करने के कायल थे, फिर एक शख्स ने आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और आप फिर शेयरिंग मोड में आ गए. डॉक्टर साहब, मैं जब आगे देख रही हूँ कि आप पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव थे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में, आपने स्पोर्ट्स में बड़ा हिस्सा लिया.
हाँ जी, स्पोर्ट्स में वैसे मेरा जो हाइट है ना वो तो ठीक ठीक है, तो लेकिन शरारती भी थे, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत खेलते थे. वॉलीबॉल का मैं अच्छा प्लेयर था, तो वॉलीबॉल का खाली प्लेयर नहीं था, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मैं टूर्नामेंट कराता था. मुझे याद है कि खुद पर्सनल जाकर डिफरेंट शहरों में, जैसे हमारे पटियाला है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जो बड़ी अच्छी टीमें थी.
खेलना मेरे साथ वॉलीबॉल, हरा सकती हूं मैं.
तो आज तो मैं वैसे ही मेरे नीज जवाब दे रहे हैं, कहां चलूंगा. तो आप अरफा जी यकीन करो, मुझे इतना शौक था ग्राउंड में 200-300 जो बकेट होती है, बाल्टियां होती है, पानी की छिड़कना. और सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट जब करवाते थे, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद मेरे फ्रेंड सुन रहे हो, नाउ ही इज आईजी रिटायर, जगदीश मित्तल उनका नाम है, वो मेरे साथ थे. तो क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं बोल्ड था, मुझे कोई डर डूर नहीं था, मैं किसी से कोई भी कितना बड़ा ऑफिसर था चला जाता था, लोग डरते थे. तो जब हम चंदा इकट्ठा करने गए तो पुलिस स्टेशन में एक हमारा SHO था, बैनी वाला कहते थे, बहुत सख्त था, लोगों को बहुत फेंटी लगाता था. तो जब हम थाने के पास जाने लगे तो जगदीश जी मेरे साथ थे, सॉरी माफ करना क्योंकि आप तो पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर हो,
आईजी पे रिटायर हुए.
हाँ जी. तो वो मैंने उसको बोला, वो मुझे कहता रवि कहाँ किधर चले, मैं कहा थाने, कहता यार पंगा पुआएंगा, वो थानेदार ने ढा लाना अपन. मैं कहा आ जा मेरे नाम.
वो उस वक्त क्या थे?
नहीं, स्टूडेंट थे.
अच्छा, वो स्टूडेंट थे,
हम सभी स्टूडेंट थे. तो वो तो वहीं खड़ गया, तो हम अंदर चले गए. तो वो किसी को फेंटी लगा रहा था.
अच्छा.
तो मैंने कहा, वो कहता आओ जवानों कैसे आए, मैंने कहा सर बेनीवाल साहब आपकी जेब लूटने आए हैं. कहता देख लो मेरी जेब में तो कुछ नहीं. उसको भी जजमेंट होगी, भी आदमी इतना बोल्ड है, क्या उसको पता होगा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, पुलिस वालों को होता है. तो मैंने कहा सर हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी चंदा चाहिए. वो कहता मेरे पास तो चंदा है नहीं. कुछ भी, 10 रुपए ले लोगे, 20 ले लोगे, लेकिन आप इतने शौक से आए मैं आपको निराश नहीं मोड़ूंगा। तो वो जो नीचे डाले हुए थे ना, उन्होंने फेंटा लगा रहे थे, उसको कहता छोड़ दो इसको, पुलिस वाले को कहता, कहता इनको चंदा दो, आप चला गया ऊपर। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं कि कितना दे दें, कहता यार 500 दे दे, कहता 500 के 100 रुपए
जमाने में 500 तो बहुत बड़ी बात,
फेंटा भी तो लग रहा था ना जी नीचे,
अच्छा
फेंटा भी इसी कंडीशन से छोड़ा था उसने।
अच्छा
तो वो कहता नहीं 20 रुपए ही दे देते हैं, वो कहता ऊपर खड़ा देख रहा है वो, उसने 500 दे दिया।
अच्छा
तो वो कहता ये तो 500 ही दिए हैं, आप शौक से करना, बनाली की रिस्पेक्ट का मतलब है, आपको पैसे की कमी नहीं आएगी।
वाओ।
तो उस पुलिस ऑफिसर ने तहसीलदार से बात की, और मुझे याद है कि शायद 72-73 में थे, दो हमारे SDM भी थे, IAS और पुलिस ऑफिसर भी था, IPS ऑफिसर, उन्होंने ढेर सारी हमारी हेल्प की और बहुत अच्छे हमने टूर्नामेंट कराए। और वैसे सॉकर का भी मैं प्लेयर रहा हूँ, सॉकर में हमने इंटर कॉलेज खेले हैं, तो वहां पर ट्रॉफी जीती है। एक हमारे हरजीत सिंह हैं, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में काफी ऊंची पोस्ट पर हैं, वो हमारे साथ फुलबैक थे, असली प्लेयर वो था, कहीं वो सुने, हम तो काम सारने के लिए थोड़ा थोड़ा कर लेते थे, वो यूनिवर्सिटी के प्लेयर थे एक्चुअल।
अच्छा।
हरजीत और एक जितेंद्र शर्मा थे, वो आजकल हमारे कॉलेज हैं, उनकी कमेटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, काफी चलते हैं, वो भी हमारे साथ खेलते थे, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्टली बता देता हूँ, मैं तो काम सारने के लिए प्लेयर ही था बस।
सही। डॉक्टर साहब, मैं आपके बारे में देख रही थी, कहाँ आपने जो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो BA जो करते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, मास्टर आप फिलॉसफी में करते हैं, और PhD आप कंपैरेटिव रिलीजन्स में कर लेते हैं, तो ये क्या इक्वेशन क्या बन रही है?
सच्चाई इसमें कुछ और है, सच्चाई है गरीबी। मेरे फादर मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप दो मिले, एक मुझे पॉलिटिकल साइंस का मिला और एक मुझे फिलॉसफी का मिला। फिलॉसफी जो है वो 10 क्वेश्चन होते थे, रट्टा लगाते थे हम पूरा दबाकर, मुझे ये पता था कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन होते, 10 ही आने होते थे, तो वो मेरे नंबर तो उसके कारण फिलॉसफी में आ गए। पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, जब यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन लेने के लिए तो स्कॉलरशिप के बेस पर ही पढ़ना था। जो पॉलिटिकल साइंस के हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर सचदेव बाबू, उनकी डेथ हो गई, तो उनसे मैं मिला तो वो कहते भी वी आर नॉट श्योर, क्योंकि स्टेट के 2 ही स्कॉलरशिप हैं, तो मिल तो जाएगा लेकिन गारंटी कोई नहीं है
पॉलिटिकल साइंस।
तो फिलॉसफी वाले कहते आपकी गारंटी आपको मिलेगी। अब मैं शायद अगर फॉर्म वहां पर, वो कभी मैं पॉलिटिकल साइंस भर देता हूँ, कभी फिलॉसफी, कभी पॉलिटिकल साइंस, डबल माइंडर जिसको कहते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि यार अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं फीस कैसे दूंगा, हॉस्टल में कैसे रहूंगा, तो मैंने फिर अल्टीमेटली फिलॉसफी में जाने का डिसीजन कर लिया। मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं था, लेकिन हाँ ऊपर वाले की कोई मौज ऐसी होगी इसलिए मैं फिलॉसफी में चला गया। और जब मैंने PhD की कंपैरेटिव रिलीजन की, तो उसमें यह होता था कि जो हमारी रिलीजन का सब्जेक्ट था उसमें कोई भी स्टूडेंट जिसने मास्टर्स की है, चाहे उसने पॉलिटिकल साइंस की है, चाहे इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की है, फिलॉसफी की है, वो कर सकता था। क्यों? क्योंकि रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। अगर कोई रिलीजन में के हम हिंदुइज्म के टच करते हैं या इस्लाम को टच करते हैं, तो उसमें होता है कि उस टाइम जो इकोनॉमिक्स का क्या सिचुएशन होती थी, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या थी। अगर कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बारे में, इसी तरह फिलॉसफी का तो वैसे भी थोड़ा सा लिंक था, क्योंकि हम परमात्मा, आत्मा और मेटाफिजिकल एथिक्स की बात करते हैं, लॉजिक की, क्रिमिनोलॉजी की। तो फिर मैंने सोचा भी फिलॉसफी में तो मुझे उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि मैं अरफा जी उनके काफी अगेंस्ट था।
PhD में
नहीं, MBA में।
अच्छा, मास्टर्स।
मास्टर में पूरी साहब थे हमारे, तो
जो फिलॉसफी के आपके टीचर्स थे या जो
हेड थे वो मेरे अगेंस्ट थे।
वो क्यों अगेंस्ट थे?
वो अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वहां पर एक राधा स्वामी ग्रुप था, जो आजकल मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो क्योंकि वाइस चांसलर भी वही था, हमारे हेड भी थे जो पॉलिटिकल साइंस के बताए, वो सभी एक ग्रुप के थे, और मैं उन ग्रुप के अगेंस्ट था, क्योंकि मैं रिलीजन के अगेंस्ट था 100%, क्योंकि कार्ल मार्क्स।
आज आप उसी जगह पे?
आज स्पिरिचुअलिटी में, आज रिलीजन में नहीं, आज स्पिरिचुअलिटी में। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर 2 different things। तो मैं स्टेज पर, क्योंकि मैं वहां पर स्टूडेंट लीडर था, तो मैं स्टेज पर उनको गालियां निकालता था, ये ठग हैं, चोर हैं, रिलीजन वाले ऐसे ऐसे हैं, तो नेचुरली वो मुझे कैसे PhD का स्कॉलरशिप देंगे। तो फिर मैंने सोचा भी चलो जिंदगी है, पैसे तो नहीं है, चलो कंपैरेटिव रिलीजन में अप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने कंपैरेटिव रिलीजन में अप्लाई किया तो वहां पर बहुत से लोग आए, तो इंग्लिश का हाथ थोड़ा सा तंग ही था, तो वो जो प्रोफेसर थे हमारे, सारा स्टाफ बैठा था सिलेक्शन के लिए, 2 पोस्टें थी, तो डॉक्टर हरबंस सिंह जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया लिखा सिखिज्म का फर्स्ट टाइम, तो बहुत नफीसा सरदार जी थे डॉक्टर साहब थे, तो वो मुझे पूछते हैं बेटा टेल मी वन थिंग, यू डिड यूर मास्टर्स इन फिलोसफी, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन कंपेरेटिव रिलीजन, वाई शुड नॉट यू गो इन योर सब्जेक्ट। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ऐसी है, इसके दो आंसर हैं, एक तो है डुप्लीकेट, एक है असलियत। डुप्लीकेट तो वही है कि मेरा इंटरेस्ट है, लिंक है, एक्चुअल लिंक लूंक का कोई नहीं पूछता, आपको पता ही है मैं स्टेजों पर सफाई बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मैं सफाई आंसर देना चाहता हूँ। हम मुझे सुना आपकी लेक्चर बहुत सुने, गालियाँ बहुत निकालते हो प्रोफेसरों को, तो बताओ क्या बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ऐसी है, एम ए मैंने कर ली, घर वाले मुझे पढ़ा नहीं रहते, स्कॉलरशिप मेरा खत्म हो गया, अब एम ए करने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, या तो मुझे आलू प्याज की रेडी लगाओ, मेरे फादर मेरी सपोर्ट नहीं करते, वो कामरेड हैं, वो कहते हैं हमने नहीं करना, अपनी लाइफ आप बनाओ। तो अगर मैं किसी फ्रेंड के पास जाऊंगा एक दो दिन तो मुझे टॉलरेट कर लेगा, तीसरे दिन वो कहेगा सुबह सुबह ही आ जाता यार बेकार का आदमी, उसका मतलब मैं सुइसाइड करूंगा और क्या करूंगा। अब मेरे पास जो कंपैरेटिव रिलीजन है ये एटलीस्ट 4-5-6 साल का स्कॉलरशिप है, मैं अपनी जिंदगी स्कूल से 5-6 साल तो काट लूंगा। हाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कभी गाली नहीं निकालूंगा स्टेज पर, ये मैंने रियलाइज किया। तो वो कहते भी उन्होंने कहा रोको इसको स्कॉलरशिप दो, ये नीडी है, बाकी सब सिफारशी आई हुई, ये नीडी है, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दिया, तो मैं PhD करने लगा कंपैरेटिव रिलीजन की।
बहुत खूब। डॉक्टर रवि गोयल हमारे साथ हैं। अगले पहलू की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी एक ब्रेक ले लें। यकीनन ये तमाम प्रोग्राम हमारे स्पॉन्सर्स के तवज्जो से हम आप तक पहुंचाते हैं। एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट के लिए बजमैक्स के नाम को याद रखिएगा। बजमैक्स एक कंपनी जो होलसेल में यहाँ की मेन स्ट्रीम कंपनियों से ही अपने कनेक्शन देती है और उन मेन स्ट्रीम की जो बड़ी दो कंपनियाँ डील करती हैं उससे 50% से भी कम में आपको ये इंटरनेट मिलता है। हमारे यहाँ पे भी कोई इंटरनेट्स हैं, आई पर्सनली मैं यूज़ भी कर रही हूँ मेरे घर में तकरीबन पिछले 6 साल से। बजमैक्स, इनका नंबर 416-800-0900 एंड दे आर सो श्योर ऑफ देयर प्रोडक्ट कि उन्होंने कहा है कि आप 15 दिन के लिए ट्राई करें, सेटिस्फैक्शन की जमानत देते हैं, अगर नहीं होगा तो आप कैंसिल करा दीजिएगा, नो चार्ज, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। बजमैक्स का नंबर 416-800-0900। एक और है, कहा जाता है कि ज़ाहिर इंसान चाहे खुशी में हो तब भी हम पंजाबी हैं, हमारा दिल करता है कुछ खाएं, जब हम गम में होते हैं तब भी दिल करता है कुछ खाएं। और फिर एक बड़े बूढ़ों की कहावत भी है कि पेट न पहियाँ रोटियाँ तो सब्बे गल्ला खोटियाँ। यहाँ बेशुमार पिज्ज़ा के स्टोर्स हैं मगर एक स्टोर नया खुला है, दैट इज़ नोन एज डो बॉक्स पिज्ज़ा। ये हार्टलैंड टाउन सेंटर में 5955 लाटेमेयर ड्राइव पर आपको मिलेगा। दिस इज वुड बर्नर हैं, लकड़ी के ओवन में लकड़ियां जलाने के बाद ये तैयार करते हैं। इसकी डो, इसका जो पिज्जा की जो शीट है वो मशीन पे तैयार की जाती है। देर आर आई बिलीव सो, अगर मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही तो तकरीबन 40 डिफरेंट टॉपिंग्स हैं। हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए हलाल पिज्जाज मौजूद है, एंड ऑफकोर्स देर आर मैनी पीपल दे डोंट चूज हलाल, नॉन हलाल की ऑप्शन भी है। तमाम प्रिकॉशन रखी जाती है कि कहीं कंटेमिनेशन नहीं होने दी जाती। डो बॉक्स पिज्जा, इट्स सो डिलिशियस, यू एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। 5955 लाटेमेयर ड्राइव इन मिसिसागा, और बस डो बॉक्स DOUGH box.ca वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं अगली एड अपनी देनी थी जो मैं नहीं दूंगी बिकॉज मैं एड से बियॉन्ड पीछे रखना चाहती हूँ इस प्रोग्राम को। ख्वाहिश थी कि डॉक्टर रवि की जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जाने। डॉक्टर साहब आपने पॉलिटिकल साइंस से फिलॉसफी में आए, फिलॉसफी से आप कंपैरेटिव रिलीजन में आए। होता ये है कि जब हम मास्टर्स करते हैं तो पीछे से बेस बनती चली आती है, ठीक है, और सब्जेक्ट आगे बढ़। वॉज इट डिफिकल्ट कि आप पॉलिटिकल साइंस से निकले तो फिलॉसफी में आ गए, तो पीछे की बेस को आपने कैसे किया? फिलॉसफी से निकले तो आप कंपैरेटिव रिलीजन्स में आ जाते हैं, तो वाज इट हार्ड एंड डिफिकल्ट?
बात अल्फा जी ऐसे है क्योंकि बेस तो सेम ही था। फिलॉसफी भी मेरे पास ग्रेजुएशन जब मैंने की है तो फिलॉसफी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट लाइक इन पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस की भी मैंने बाद में मास्टर्स की, तो इसी तरह होटल मैनेजमेंट की भी मास्टर्स की, उसके फिलॉसफी जो है वो ऑफ कोर्स इट्स ए ड्राई सब्जेक्ट जस्ट लाइक ए चने ना. मुझे याद है जब प्रोफेसर साहब
ओह माय गॉड स्टेटमेंट्स याद करनी इतनी मुश्किल है फिलॉसफी
वो तो की. कुछ पता ही नहीं चलता था. वो बोलते रहते थे, कभी कहते थे परमात्मा ऐसा है, कभी कहते ऐसा है, कभी कहते ऐसा है. हम सो रहे थे, सोने के बाद कोसते थे भी ये क्या करते हैं. फिर वो ही रट्टा लगा
हम तो ये कहते, मैंने खैर कभी भी नहीं पढ़ा, मगर हम ये सोचते थे ये जो फिलोसफर है ना या अल्लाह, वो जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स बनाई वो तो मर खप गया सी, हम का याद करिए.
बिल्कुल ठीक है जी. फिलोसफी को जो हमारे टीचर भी थे उनको भी हम थोड़ा सा परेशान करते थे. वो कभी आइडियलिस्टिक कभी रियलिस्टिक, वो समझ नहीं पड़ता था क्या है. उस टाइम तो रियलिस्टिक ये थे कि उम्र है कि लड़कियों के पीछे जाओ, उनके साथ फ्रेंडशिप डालो, समोसे खाओ, बर्फी खाओ. ये कहाँ परमात्मा की बात आ गई, कहाँ आत्मा का परमात्मा के संबंध, माइंड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, क्रिमिनोलॉजी कैसे पकड़ी जाती है, लॉजिक क्या होती है.
सही.
ये सारी बकवास बातें होती थी. लेकिन सॉरी मैं बकवास तो नहीं कहना चाहता क्योंकि उसकी रोजी रोटी की उसके बाद जॉब की मैंने. लेकिन वो वहां पर इंटरेस्ट नहीं था, मजबूरी थी. लेकिन जब रिलीजन में भी गए तो मुझे याद है कि पीएचडी करने के लिए डॉक्टर एल एम जोशी बुद्धिज्म के थे हमारे और डॉक्टर हसन जो इस्लाम के थे. तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ कंपेरेटिव रिलीजन. वो कहते बेटा बात ऐसी है थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी. मैंने कहा मेहनत करूंगा. कहते हाँ मेहनत आप करते हो गालियां निकालने की स्टेज के ऊपर करके, है ना, आप नहीं कर सकते. तो ऐसे करो थोड़ी सी बुक्स निकालो इस टॉपिक के ऊपर, सिनॉप्सिस लिखो एक दो पेज के. मैंने कहा ठीक है. मैं लाइब्रेरी में गया, यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, जो भी जितनी बुद्धिज्म की बुक्स थी और क्रिश्चियन और इस्लाम की थी वो निकालकर हमारे कैबिन होते थे वहां पर रख ली बड़ी बड़ी. तो 15-20 दिन के बाद तो डॉक्टर साहब आए. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहते कैसे चल रही है. मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं थोड़ी थोड़ी स्टडी करता हूँ. कहता मैं जब भी आता हूँ ना आप टेबल पर सो रहे होते हैं, बुक होती है. कहता आपके बस का रोग नहीं पीएचडी पीएचडी करनी, आप 4-5 साल जो खाना पीना खा लो, आप अपनी जॉब जू ढूंढो, आप कैसे पीएचडी कर लोगे. मैंने दिल में बहुत बुरा मनाया कि इसको कभी स्टेज पर बोले तो बताऊंगा बुद्धिज्म क्या होती है, है ना. तो खैर वो फिर हमारे एक डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सिन्हा, वो यंग लड़की थी, वो हमारे टीचर बनकर आए. लेकिन जैनिज्म के डॉक्टर सॉरी उस भट्टाचार्य थे बंगाल से, वो लेडी जो यंग लड़की थी, और डॉक्टर सिन्हा थे इस जैनिज्म के, वो दोनों ही यंग प्रोफेसर थे. तो उनकी गिटमिट लगी रहती थी और हमें पता था भी ये क्या करती हैं. तो हमने उसका बेनिफिट लिया, हमने उनके चप्पल वगैरह जो कुछ भी चमचागिरी पंजाबी में कहते करो. तो वो डॉक्टर भट्टाचार्य कहते तुम मेरे अंडर कर ले, मैं भी नहीं हूँ.
अच्छा.
तो उन्होंने मेरी फिर जैसे भी है, मैं नहीं कहता कि मेरी मेहनत है, उनकी मेहनत से हमें पीएचडी मिल गई. बात ऐसी
बड़ी कमाल की तरफ आप बात को लेके मुड़ गए हैं. जाहिर है अब डॉक्टर साहिबा जो थी यू आर वेरी नियर एंड डियर टू हर, और पीएचडी करने के बाद आपने फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप
पढ़ाना पड़ते हैं.
और मीन वाइल कमलेश जी वो भी She was much younger than you and
no,
भी,
no. हम एक ही उम्र के हैं, लकीली 54 का उनका बर्थ है.
प्रोफेसर उसने फेवर दी, शादी आपने इनसे कर ली.
किसने? नहीं वो तो उनकी गड़बड़ चल रही थी, हम क्यों बीच में गड़बड़ करें. उनकी जैनिज्म और हिंदुइज्म मिल रहे थे तो हमने कहा मिलने दो, क्योंकि हम तो वो फिश खाने के इंटरेस्टेड थे. तो हम उनके साथ यूनिवर्सिटी से शहर में चले जाते, उनकी फिश उठाकर ले आते, उनकी गोभी मसाला ले आते, वो बात करते रहते. तो उन्होंने कहा इसको यार करवाओ, इसको कुछ आता होता तो नहीं है, इसको कुछ लगवाओ, है ना. तो बस हो गई
अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब आपने फिर पढ़ाया एक अरसा, और मैं एज ए टीचर जहन में मेरे आता है कि जब हम स्टूडेंट अपना एजुकेशन करियर मुकम्मल करने के बाद फील्ड में आते हैं, अब जब आप पीछे अपनी चेयर के ऊपर खड़े होके आगे स्टूडेंट्स को देखते थे, तो क्या आपको अंदाजा था कि आपके स्टूडेंट्स भी वही कुछ कर रहे हैं जो आपने कुछ महीने पहले किया?
बिल्कुल अरफा जी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई वो लड़कियों के कॉलेज था, GCW लुधियाना, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना. जब हुई मैं यंग था, आई एम ओनली 22 ईयर्स ओल्ड. तो जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया तो हमारे साथ एक पीएचडी कर रहे थे डॉक्टर सांगा. तो वो उस कॉलेज में कभी पढ़ाया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने पीएचडी नहीं की, वो परमानेंट नहीं हो सके, तो उनको पीएचडी करने के लिए आना पड़ा. मैं उनके पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ऐसी है, ये देखो मेरा लेटर आया है, आप वहां पढ़ाया है लुधियाना में, तो आप कुछ मुझे गाइड करो. तो उनको जेलसी थी, ये उम्र का नहीं होता। वो कहता देख गल सुन तेन दसा, तेरे पैन के छित्र उथे कुड़ियां ने कुट कुट के तेन मारना, तू कर दा बदमाशियां इत्थे, किसी ने कुछ बोलना किसी ने कुछ बोलना। डराता ना तेन कहना अंग्रेजी आँदी है बोलनी, उत्थे तो इंग्लिश मीडियम है। मैंने सोचा भी मेरे काम का बात नहीं, तो फिर मैंने एक अपने फ्रेंड को बोला, वो कहीं और कॉलेज में था, कि मैंने कहा आकर मिलो, तो वो यूनिवर्सिटी में आया, तो मैंने कहा भी यार अंग्रेजी का मैंने आँदी नहीं, उत्थे अंग्रेजी मीडियम है। तो करैक्टर वालों मैं वर्फा जी बिल्कुल ओपनली कह रहा, कोई प्रूफ कर दो, मैं हरेक नु अपनी भैन समझ के रखे,
वो
ऐसी नहीं है कि अगर मैं लीडर भी के किसी के साथ बदमाशी या जाति की, बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्यार बहन और ब्रदर्स एंड सिस्टर रिलेशन रहा है, ये मैं ओपनली कहता हूँ। तो वो तो
अच्छा, उन्होंने फिर आपके दोस्त ने क्या कहा?
उसने मुझे कहा भी ऐसे है भी आप बहुत कामयाब हो गए वहां पर, तो आप शरारती हो, है ना। वो तो फिलोसफी में तो जो बुजुर्ग जो होते हैं लोग उनको मजाक करते हैं, उनको नहीं चलने देते आपको, कि आपको तो इतनी शरारत करती है। और दो बातें ख्याल रखना, मैंने क्या किया, क्या पहली बात तो उनको लड़कियों को बोलना कि लेक्चर शॉर्ट नहीं होंगे आपके, क्लास लगानी है नहीं लगानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 ही पेपर में आएंगे, 5 जो मर्जी कर लेना, क्योंकि हमारे टॉपिक ही 10 से ज्यादा बनते ही नहीं। और दूसरी बात है भी लेक्चर शॉर्ट नहीं करने मैंने कभी भी, और कोई गाना गुने गाने तो खीर में पढ़ लेंगे, तो शुगल मेला करते हैं। तो मैं वही किया, मैं कामयाब हो गया कॉलेज में।
हाँ, ये तो डॉक्टर फैक्ट है, जो यंग टीचर्स आया करते होते थे, यंग टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया करते थे, क्योंकि जनरेशन गैप कम हुआ करता होता था। भाई तभी अभी आपने कहा आपको गाना गाना आता है, तो जरा एक गाना हो जाए, मेरा ख्याल थोड़ा फिर हम एक और सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, कोई गाना हो जाए।
गाना अरफा जी ऐसे जो मुझे गाने आते हैं ना वो कोई सुनना नहीं चाहता।
चलिए एक गाना आप कमलेश जी को के लिए जो गाना गाते हैं वो गाना सुनाएं।
एक लाइन मैं सुना देता हूँ, जो कमलेश जी को नहीं, जो कमलेश जी को कभी आज से मुझे याद है कि हम मिले थे, हाँ वो 70s की बात है, जब कॉलेज में पढ़ते थे,
जब आपने ट्रैप किया था उन्हें,
ट्रैप टू तो पता नहीं किसने किसको किया था, लेकिन हम एक दूसरे को लाइक करते थे, तो उन्होंने उनको मैंने,
अगर आपकी एफर्ट ज्यादा होगी
वो ऐसे ही है, वो बराबरी हो गया काम, वैसे अल्लाह को ही पता। तो उसमें चार लाइनें, दो लाइनें में उनको सुनाई थी उस टाइम 71 में, 70s में
जी।
तो था लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात हुई तो अंगारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।
बहुत खूब। अच्छा, जब आपने ये गीत उनके लिए गाया, उनको गा के सुनाया, तो उनका रिस्पांस क्या था?
उन्होंने भी सुना दिया जी।
कौन सा?
अब मुझे वो पता नहीं, मैं आपको
कैसे हो सकता है, मोहब्बत की जो पहली दास्तानें होती हैं वो तो इंसान मेरा ख्याल कभी नहीं भूल सकता। आपको जरूर वो गाना कभी कभी आप
मैं दो मिनट बाद सुना, मुझे याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग।
कैसे हो सकता है?
नहीं,
आपको उनका बर्थडे याद
है जी?
आपको उनका बर्थडे?
हाँ हाँ पक्का। तो वो नहीं है, मैं आ जाएगा, मैं सुना दूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया।
जिसमीन आप दोनों का इश्क हुआ था, तो आप उनको तोहफे क्या दिया करते होते थे?
तोहफे कुछ नहीं, तोहफे तो अब भी नहीं दिए। अभी वैलेंटाइन डे निकला है तो मेरी बेटी साथ में थी, वो कहती डैड आज वैलेंटाइन डे है तो आप मम्मी के लिए ले जाना को गुलाब का फूल, कास्कर में था। मैंने कहा हम फॉर्मेलिटी नहीं करते।
नहीं, मगर तब तो आपने जरूर की होगी।
नहीं नहीं, और फिर ऑनेस्टली बड़ी सिंपल लाइफ थी, बड़ी सिंपल लाइफ। मुझे याद है कि
मिठाई शिठाई लेके जाते?
नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, वैसे ही।
कैसे उनको प्लीज करते?
वो अंदर से ही था हमारा कुछ इश्क रूहानियत का था, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
ये तो देखा ना, आज आप कमलेश जी को इसीलिए साथ लेके नहीं आए ताकि वो सच सच
सच सच बात है। मैंने आपको बताऊं कि जब हम किसी डेरे में गए जहां पर हमारे मास्टर थे, तो यकीन करना कि मुझे भी ड्रीम आया, उनको भी आया, अलग थे। सेम ड्रीम था जब दूसरे ने देखा कि भाई हमारी शादी हो रही है, हम सोचे कि शादी कैसे हो सकती है, लेकिन वो महाराज जी कह रहे हैं नहीं होगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। उन्होंने अपने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे हैं मैं, उन्होंने यस कर दिया। तो वो कनाडा में जब पढ़ने आए थे तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरी लास्ट चिट्ठी, जब वो रक्षा में बैठकर ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाना था, वो रास्ते में उनके फादर ने कहा कि रवि दी चिट्ठी आई है पढ़ लै, कहते वो पता नहीं चिट्ठी की सी, मैं कनाडा पक्का भी हो जाना चाहती, फिर भी नहीं हुई, मैं वापस चली गई।
اچھا وہ یہاں ایجوکیشن کی؟
ہاں جی وہ براک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہاں پر رہے 2 سال، تو واپس پھر انڈیا چلے گئے.
اور آپ نے 2 سال ان کا انتظار کیا؟
انتظار تو نہیں، ایسی تو نہیں کوئی بات تھی، ویسے رونق میلے میں چلتا تھا، کوئی خیال نہیں ہے، پر ہاں کسی نہ کسی کارنر میں
خط لکھتے تھے ان کو یا فون کرتے تھے؟
بہت زیادہ خط لکھتے تھے، فون تو ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ
ایس ڈی ڈی کنیکشن تو ہوا کرتے،
وہ کون غریب آدمی کو کون ایس ڈی ڈی ملا کر دیتا ہے، پیسے تو ہوتے نہیں تھے، کہاں جائیں گے کسی کے پاس. حقیقت یہی ہے کہ جب میں امرتسر گورنمنٹ کالج، میری زیادہ جو ٹیچنگز ہیں پروفیسر ہوں میں وومین انسٹیٹیوشن میں ہوں، اور یہی اچھی بات ہے کہ مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی، کیونکہ میری کلیئرٹی بڑی ہے اندر سے، اگر میری وائف ہے تو وہی وائف ہے، باقی سب میری سسٹرز ہیں.
کوائٹ انڈرسٹینڈ.
تو وہ ایسے ہوتا کہ وہ وہاں پر بہت چانسز مل جاتے ہیں وومین کالجز میں جو گند ڈالنا ہے، پر اس کے لیے چھتروں کا بھی تیاری رکھنی چاہیے، کبھی نہ کبھی پڑھیں گے.
ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے یہ ماں باپ کی تربیت بھی ہوتی ہے. میں کملیش جی کے بارے میں ہم بات چیت جاری رکھیں گے، میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، خاص طور پہ جو لوگ پولیٹیکل سائنس جب پڑھتے ہیں یا لا جب کرتے ہیں تو اکثر پالیٹکس کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا ہوتا ہے. آپ نے اپنے علاقے میں ایک زمانے میں کونسلر کا الیکشن بھی لڑا تھا، حالانکہ آپ بڑے ایکٹیو تھے، بٹ میں آپ کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ فالس پرومس یا جھوٹے وعدوں سے آپ نے ہمیشہ گریز کیا، تھوڑا سا شیئر کریں.
ہاں جی بالکل ٹھیک ہے عرفہ جی، 77 میں اف آئی ایم ناٹ رانگ 77 میں الیکشن ہوئی تھی سٹی کی. تو ایکچوئل جو میں ابھی اپنے فرینڈ کی بات کر رہا ہوں نا جگدیش متل، وہ بھی ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، ہم نے سوچا یار گند لوگ ڈالتے ہیں پالیٹیشینس، ہم کیوں نہیں پڑھ لکھ کر پالیٹکس میں آتے. تو ہمارے گھر میں ہی پلاننگ بنی، پر ہم اتنے دونوں بدھو تھے، ہم دونوں نے جب فارم بھرے دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی کھڑے ہو گئے ایک ہی علاقے. تو دونوں یہ ہیں ہمارے فرینڈ جو دیکھ رہے ہو آپ، جگدیش متل، ہی واز ایس ایس پی ایٹ دیٹ ٹائم. تو ناؤ جی ہم اکٹھے ہی الیکشن لڑے، لیکن فرینڈ شپ نہیں ٹوٹی ہماری. ہم لیکن جو میرے
اپوزٹ کیوں آ گئے ایک دوسرے،
ہمیں پتا ہی نہیں تھا بھی کیسے فارم بھرنے ہے نا، ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہم نے سوچا بھی دو جنے وہ الگ الگ کمپٹیشن ہوگا. لیکن وہ جو
آپ کسی اور وارڈ سے نہیں چلے گئے؟
نہیں چلے جا سکتے تھے، لیکن وہ پتا تب چلا نا، بعد میں پتا چلا
کہ ہم ہار گئے.
ہم تین تھے جی، ایک جو جتندر شرما تھا وہ بھی الیکشن لڑے تھے، تینوں ہی ہارے ہم نے، لیکن تینوں ہی ویل سیٹل ہے، یہ پولیس کے چیف بن گئے، وہ کالجز کے بن گئے، تو میں کینیڈا میں آ کر میری اپنی ریپوٹیشن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بچے سب ٹھیک ہیں. تو لیکن وہ الیکشن کی بات ایسی ہے کہ جب پیرنٹ جاتے تھے نا، وہ فالس پرومس جیسے آپ نے بولا تو ابھی بھی چلتے ہیں. وہ کسی نے، میں کسی کے مجھے یاد اچھی طرح، وہ اسٹریٹ میں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ بھی اچھا جی اگر آپ جیت گئے تو ہمیں سٹی میں میونسپلٹی میں جاب دلا دینی. تو اب بولنا تو میں نے تھا کیونکہ کینڈیڈیٹ تو میں تھا، وہ تو سب پیچھے تھے. تو میں نے کہا بھی آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ کہتا جی میں سر 12ویں پاس ہوں. میں نے کہا میں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کے کرنے کے قریب ہوں، مجھے تو جاب اب واپس پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، تجھے کیسے جاب دلا دوں گا، کیا ایجوکیشن ہے؟ تو وہ بات ختم ہوگی، میرے گھر میں آ کر مجھے کافی ڈانٹ پڑی کہ تو بیوقوف ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر بوٹے مانگ رہے ہیں، تو کہتا میں کیسے دلا دوں گا. میں نے کہا میں جب دلا ہی نہیں سکتا میں کیوں پرومس کروں؟ کہتے پالیٹکس میں نہیں ایسے چلتا، پالیٹکس میں یس ہی کرنا تھا. اس ٹائم کہہ دیں گے بھی کوئی سچویشن ہوگی نہیں کہ دلا سکتے. میں نے کہا پھر میری توبہ ہے، میں نہیں ایسی گندی پالیٹکس میں جانا تھا. عرفہ جی یقین کرو مجھے آج کینیڈا میں بھی چانسز ملے ہیں مین پارٹی کی طرف سے. آئی واز ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر، کانفیڈینشیل باتیں رہی ہیں، لیکن میں نے کہ اس ٹائم توبہ کر لی تھی، میں آئی ایم اے لٹل بٹ مین آف پرنسپل کہ یہ گند ہے پالیٹکس، سبھی کے لیے نہیں سیوا بھی کرتے ہیں. تو میں نے اس کے، میں حالانکہ ہیلپ کرتا ہوں لیکن میرا پالیٹکس میں میں سپنے بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ خوشی چاہیے پالیٹکس میں، خوشی تو مجھے ڈھیر ساری پرماتما نے ویسے دے رکھی ہے.
کملیش جی بھی یونیورسٹی میں گئیں، انہوں نے اپنا سبجیکٹ کچھ اور تھا، پھر انہوں نے فارمیسی کی طرف نکل گئی، وہ کیا
ایکچولی انہوں نے ماسٹرز ان انگلش کی تھی،
وہی میں حیران تھی لٹریچر میں کرنے کے بعد تو فارمیسی
میں، وہ اتفاق کی بات ہے. ایکچولی جب انہوں نے ماسٹرز کی تو میری پوسٹنگ گورنمنٹ کالج کوٹ پورا ہو گئی.
شادی ہو گئی؟
ہاں جی شادی ہوئی تھی اس ٹائم، تازی نئی نئی شادی تھی. تو میں کوٹکپورے میں تھے، وہاں پر ایک وومین کالج تھا اسی کے ساتھ ہی جیتو، بہت ہمارا اس کی ہسٹوریکل پلیس ہے جیتو. تو وہاں پر ان کو وومین کالج میں جاب مل گئی. تو جب جاب ملی تو وہاں پر ایک دو سال یا سال دو سال کے بعد موگا ہے، موگا میں ایک نیا کالج کھلا ود دا ہیلپ آف رشیا.
अच्छा।
रशिया गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी उस कॉलेज को, और उसका जो प्रेसिडेंट था वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था पंजाब का। तो उन्होंने, क्योंकि हमारे थोड़े से रिलेशन थे, तो उन्होंने कहा भी हमने कोई यंग प्रिंसिपल वहां रखनी है फार्मेसी कॉलेज में, क्योंकि फंड तो अमेरिका रशिया से आता था। तो उन्होंने इंटरव्यूज की, तो मैंने उनको बोला भी ऐसे है, अगर आपको सिफारिश की बात नहीं, भाटिया साहब उनका नाम था, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर्स भी रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा भाटिया साहब बात ऐसी है कि इंटरव्यू पर वो आएंगे, सिफारिश की बात नहीं, जब जितने भी कैंडिडेट होंगे अगर 19 और 21 का फर्क हुआ तो हमारी वाइफ को मत रखना। अगर आपका कंडीशन यह है कि वो बाहर की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इंग्लिश पूरी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अगर आपको लगे कि 20 है हमारा, 22 है, तब हमारे कैंडिडेट को रखना, क्योंकि ये शुरू से बोल्ड थी। इंग्लिश की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि नॉट ओनली वो मास्टर्स,
आपने कहा कि आप अंग्रेजी में पैदल थे, वो उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया था, तो वो अंग्रेजी की धाक बिठाया करती थी आप पे।
एक्चुअली तो सारा कुछ जो इंग्लिश सिखाई है उन्होंने ही सिखाई है, मैं झूठ क्यों बोलूं, जितनी भी मैं कुछ करता था उनसे ही लिखवा कर ले जाता था। मैं क्यों झूठ बोलूं, इसमें तो कोई बात नहीं है, वो मेरे इंग्लिश में गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं। शी नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। कभी देखो अरफा जी कहना नहीं चाहिए, ये नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ, अगर मैं हक हलाल की आज टॉपिक पर बात करता था उसमें जो भी मेरे उसका वाइफ का रोल है। अगर कोई हेरा फेरी के, मैं टूरिज्म में रहा, वहां पर लाखों रुपए हेरा फेरी कर सकते थे, अगर मैं कोई कभी चाय भी पिया तो उन्हें कहता चाय आपको अलाउड ही नहीं है, आप चाय कैसे पी रहे हो। मैंने कहा फिर क्या होगा, सभी पीते हैं, वो कहते देखने वाला तो आपके बीच में बैठा है, आप हमारे पास पैसे हैं तो हम अपनी पैसों की चाय क्यों ना पिए।
इन्फ्लुएंस ऑफ द वाइफ,
तो वो उनके जो थे ना मुझे बीच में गाइड करने के लिए, इसी कारण है कि लाइफ बड़ी सुखी हुई।
डॉक्टर साहब आप कनाडा फिर ये वापस चली जाती हैं, फिर आप शादी होती है आपकी वहां जाने के बाद, इनके वापस जाने के बाद, फिर कितने अरसे के बाद आप कनाडा वापस आए थे?
कनाडा हमारी शादी 80 में हुई थी, तो 87 में हम वापस आ गए, क्योंकि फिर जॉब करने लगे हम, तो जॉब करते करते हम उस टाइम कोटकपूरा में थे, तो ये क्योंकि प्रिंसिपल थे फार्मेसी के, लेकिन वहां पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हमारे पंजाब में गड़बड़ चल रही थी, डेली कत्ल हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सिखों का झगड़ा था, फसादत थे, तो वहां से रिजाइन करके ये फिर कोटकपूरा वापस ही आ गए मेरे पास ही। तो वहां पर एक स्कूल था बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड का, वहां पर प्रिंसिपल टेम्पररी हो गए। तो उसके बाद हम, क्योंकि कनाडा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, तो हम विजिटर वीजा पर आए थे, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, विद इन 24 आवर्स हम यहाँ पर पक्के हो गए।
एजुकेशन करियर आपने अपना लिया दोनों मियाँ बीवी ने, और जब आप यहाँ आते हैं तो दो बच्चियों के साथ आप आते हैं, बेटा आपका बाद में पैदा यहाँ आके होते हैं, यहाँ आके आप टोटल डिफरेंट फील्ड में चले गए, यानी यू गॉट इनटू द फर्नीचर फील्ड।
हाँ जी, वो ऐसे है जी, डिटर्मिनेशन था। देखो अरफा जी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं अपनी थोड़ी सी ना, मेरी बोल्डनेस है, गरीबी कितनी भी हो लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल कभी त्यागे नहीं। जॉब मुझे लोगों ने ऑफर की, वो मिसयूज करना चाहते थे कि आप ये कर लो वो कर लो, मैंने कहा भी मैं वहां पर प्रोफेसर था, और ये सच्चाई है, क्लर्क नहीं था कि जहां पर आकर मैं प्रोफेसर बोलूं, और मुझे रोटी मिल रही है, मैं छुट्टियों पर आया हूं, मैं यहां पर बगार का काम नहीं करूंगा, भी ये कर लो वो कर लो ये नहीं है। तो हमने फ्ली मार्केट लगाई थी पहले, लेकिन ये बात सच्चाई है कि अगर 24 आवर्स हैं तो ऑलमोस्ट सोने के 7-8 घंटे निकाल दो, बाकी सारे घंटे अल्लाह की, परमात्मा की, सारी उसकी याद में ही निकलते थे। खाना भी खाते बुल हिल रहे हैं तो उसकी याद में हिलते हैं, इतनी हमारे मेडिटेशन उसकी ऊपर कृपा थी। और इसीलिए बस जो कुछ भी अब इसको बताने की बात नहीं है, उसकी जब देता है छप्पड़ पाड़ कर देता है जिसको भी हाथ डाला आगे, लेकिन हेरा फेरी नहीं की कभी बिजनेस में, या किसी गवर्नमेंट की यहाँ पर रेवेन्यू के से आओ, किसी के साथ कोई टैक्स की हेराफेरी की हो या कोई और, नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि जाना खाली है, एक रोज जहानो जाना है, जब कबरे बिच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग बसार नहीं, वो मौत को मैं कभी नहीं भूला।
डॉक्टर साहब, आपने सिमन फर्नीचर जैसा भी आपने कहा कि फ्ली मार्केट से शुरू करते हैं और फिर आप इसकी ब्रांचेस में रखकर, कितनी ब्रांचेस कर दी थी?
10-11 ब्रांचेस थी।
अच्छा, मीनवाइल आपके बेटे भी पैदा हो जाते हैं, तो हम मतलब इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखें तो अक्सर हमारे आदमी काम करते हैं, तो औरत जो है नॉर्मली बच्चों को रेज करने के लिए है, क्योंकि बच्चों को रेज करने के लिए पूरी तवज्जो की जरूरत है। तो आपकी मिसेज की माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑल थ्री किड्स आर डॉक्टर्स, आपके बेटे माशाल्लाह ही सच अ वंडरफुल एंड अ फेनोमिनल
یانگ مین, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ کی دونوں بیٹیاں بھی ڈاکٹر ہیں, تو کس نے بچیوں کو ریز کرنے میں, ان کو فوکس کرنے میں زیادہ رول پلے کیا؟
ناٹ می بٹ ہم.
نہیں تو بیوی نو بھی تھوڑا کریڈٹ دے.
نو نو, بی بی اینڈ می بوتھ آر کیم فرام دا سیم اوشن.
یار نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو تسی غدر کر رہے ہو نا, یہ تو ڈاکٹر صاحب غدر کر رہے ہو. آخر اوشن تو اتھوں آئے, رب نے دیتا, پر ہر ہن میں تانوں ایک پلانٹ دے دوں, ٹھیک ہے؟ پلانٹ بڑا خوبصورت ہے, ہیلتھی ہے, تسی انہوں پانی نہ دیو, تسی انہوں کیئر نہ کرو, وہ تو دوسرے دن سڑ کے مریا پیا ہوئے گا. آف کورس گرومنگ کے لیے, بچوں کو ریز کرنے کے لیے ون پرسن ڈیڈیکیٹس ہم سیلف اور ہر سیلف. سو دس مینس دس از یور وائف.
عرفہ جی سوری, میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. میں اس کا ایک سمپل طریقے سے آپ کو آنسر دیتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ ہے, پانچ سال کا, چھ سال کا, آپ کو پوچھتا امی میں کہاں کیسے پیدا ہوا, آپ کے گھر کیسے آیا, ہاؤ یو کین ایکسپلین, ایک منٹ مجھے کمپلیٹ. تو آپ کچھ بھی سٹوری بناؤ گے کہ ایسے ہے, ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے, ایسے ہوا ایسے ہوا. جب اس کا لیول پندرہ سولہ سال کا ہو جاتا ہے, وہ آپ کو کبھی نہیں پوچھتا, اس کو نالج ہو جاتی میں کیسے ہوا. تو اٹس سے کوشچن آف لیول. جو ہم ہیومن بینگ ہیں نا, اب میں اسپرچویلٹی کی بات کرنے لگا ہوں, جو ہیومن بینگ ہیں, کیونکہ آپ بھی سامنے بیٹھے ہو, میں بھی سامنے بیٹھا, وی آر آل ہیومن بینگ. تو ہم ہیومن بینگ کے طریقے سے جو لیول ہے اس کا آنسر چاہتے ہیں, لیکن وین یو گو ود ان تو آنسر چینج ہو جائے گا. ایفرٹس وفرٹس کچھ نہیں ہے, میں آپ کو 100% بتاتا ہوں. آپ جہاں سے ہم ایئرپورٹ چلتے ہیں, جہاں سے بیٹھ کر, تو آپ کی کار بھی کافی بڑی ہوگی, تو جب بلڈنگیں دیکھیں گے کافی اونچی ہوگی, جب جہاز میں جائیں گے تو بہت بڑا ہوگا. کیسے پتا چلا؟ ان آنکھوں نے میسج دیا اور برین نے اس کا میننگ نکالا. لیکن اسی جہاز میں جب وہ جہاز تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے تو وہی بلڈنگ چھوٹی ہوتی ہے, میسج تو وہی آنکھیں دیتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں چھوٹی. اس کا مطلب پہلے غلط تھا کہ جہاز کے اڑنے کے بعد غلط تھا, دونوں ہی ٹھیک تھے, کیونکہ تب ہم اس لیول میں تھے اور جب ہم اوپر گئے تو اس لیول پہ تھے. وین یو گو ود ان, کوئی محنت کر کے ترقی کرو گے نا, پھر آنسر ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جو عام آدمی کے سمجھ میں. آئی
اگری ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بچوں کی ریز کرنے میں, اینڈ میں نے یہ پرائس ادا کی ہے اپنی زندگی میں, اینڈ آئی ریئلائز کہ بچوں کو فوکس رکھنا, ایک بندہ فل ٹائم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اسکول لے کے جانا, اسکول سے واپس لے کے آنا, گیمس پہ لے کے جانا, فردر کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں لے کے جانا, ان کو کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا, جزا اور سزا کا معاملہ. تو there must be one person جو اپنے آپ کو وقف کرے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ دے رہے ہیں مجھے پولیٹیکل جواب, ٹھیک ہے,
اسپرچل
نہیں ڈاکٹر.
تو ایسے کرو, چلو ہم اپنے لیول پر. اگر
آپ مجھے بتائیں, اپنی بیگم کو تنگ کتنا کرتے ہیں؟
نہیں کبھی, میرا خیال نہیں تنگی کی بات, آرگومنٹ تو ہو جاتے ہیں.
نہیں ڈاکٹر صاحب, مطلب اگر ہم ان دنوں میں چلے جائیں جب آپ نے ان کو جیتا تھا, انہوں نے آپ کو جیتا تھا, اور اگر میں آج کے دور میں آ جاؤں, تو کس کو زیادہ گلہ ہے؟
گلہ کبھی پوچھیں دونوں کے, دونوں میرے نیز دکھتے ہیں. میں کہتا ہوں چاہے آپ لے آؤ, ان کو دکھ, ان کے ہے تھوڑی سی سرجری ہوئی, آپ کو کہتے آپ لے آؤ, اس لیے ہمارے آرگومنٹ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو سبھی پر دو بھانڈے کھڑتے ہیں, لیکن مین جو ہونی چاہیے نا, وہ ڈفرینس اوپینین نہیں.
بچوں کی فیور کس کو زیادہ ہے, آپ کو یا؟
وہ تو مدر کو ہی ہوتی ہے, کیونکہ فادر جو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتا ہے, وہ اس نے ڈفرینٹ آسپیکٹ سے سوچنا ہوتا ہے. مدر ڈفرینٹ, وہ اس کا کھانا کھا لو, بھوک لگی ہے کپڑے لے لو. فادر نے سوچنا ہے اس کو فیس چاہیے, اس کے لیے فیوچر کے لیے کہاں ریزیڈینسی اپلائی کرنا ہے. وہ دونوں کے ڈفرینٹ فیلڈ ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو ایسے لگتا ہے کہ فادر سخت ہے. اگر سختی نہ تھوڑا سا کرے, کیونکہ اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے, اگر سختی نہ کرے تو پھر بچے خراب ہو جاتے ہیں. اور پیرنٹس کو اگزامپل بننا پڑتا ہے. اگر ہم کو بولے کہ کلبوں میں نہیں جانا اور ہم کلب میں جائیں, تو پھر وہ اثر نہیں ہوگا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ پرماتما ہی ہے, اس کی ڈیسٹینی بنانے والا ایک ہے, تو آپ کو اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. اگزامپل آپ سیٹ کرتے ہو. ہاں یہ بات میں آپ کو جو آپ کہتے ہو, تو اگر وہی آنسر سننا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم بزنس میں تھے تو ٹرسٹ می, ہم 10 بجے گھر سے 9:30 چلتے تھے اور 3 بجے ہم گھر میں واپس آ جاتے تھے. بس اتنا ہی کام کیا ہم نے, کیونکہ جتنا بھی ہمارا اسٹاف تھا جو تھا, ہم ان پر ٹرسٹ کرتے تھے, ان کو اچھی سیلری دیتے تھے, وہ ہمیں اچھا کما کر دیتے تھے. ہم زیادہ کام کبھی نہیں کیا.
اچھا فرنیچر اسٹورز تو بالکل نکال دیے, کیونکہ پھر جب بیٹے آپ کے انکش گوئل جو ہیں, وہ ماشاء اللہ سچ اے ونڈرفل ڈاکٹر. میں بلکہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کینیڈا میں چند ایک ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے پاس وہ سرٹیفیکیشن اور وہ کوالیفیکیشنز ہیں. وہ جو شیئر,
वो ऐसे अरफा जी जो डॉक्टर अंकुश है, मैं एक सिंपल बताता हूँ कि हम वी लिव इन ब्रैम्पटन, लिव मीन्स उनकी प्रैक्टिस ब्रैम्पटन में है। ब्रैम्पटन में यहाँ पर एक रूल्स हैं, गवर्नमेंट के लॉज हैं कि ब्रैम्पटन में टोटल आज की डेट में 543 फैमिली डॉक्टर्स हैं, वो भी फैमिली डॉक्टर हैं। तो उसमें रेट एमडी बोलते हैं कि जो लोग कमेंट्स देते हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट नंबर लगाती है अभी कितना इसकी है। आउट ऑफ 543 इस साल गॉड्स ग्रेस उसका नंबर 3 है, ही इज ए यंग डॉक्टर। यू कैन प्रेस एनी डॉक्टर्स नेम इन ब्रैम्पटन तो उसमें डॉक्टर अंकुश का नाम आएगा टॉप 5 डॉक्टर्स। तो वो ये इंडिया वाला काम नहीं है, पाकिस्तान वाला के सिफारिश करके दिलवा दो रेट एमडी या कोई, उसके बकायदा गूगल में नाम आता है, रिव्यूज बड़े ऑथेंटिक होते हैं। और अगर गड़बड़ करे तो वो वैसे ही पता चल जाए। अगर हम कहते हैं कि ये शांतिलाल डॉक्टर है तो जाकर आपके साथ लड़ाई कर ले तो वो पता चलता है कि शांतिलाल जाली शांतिलाल है ना। तो वो उसकी ग्रेस है। लेकिन मैं अरफा ये कहता हूँ, ही इज नॉट माई सन, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज नॉट माई सन, ही इज मोर देन एवरीथिंग टू मी। वो इतनी वो बस किसी का भेजा हुआ है, वो टेम्पररी है हमारे साथ रिलेशन।
अल्लाह उसकी जिंदगी दे,
उसकी जो है ना उसके साथ बात करने में वो बहुत अच्छा गाइड करता है।
उनकी वाइफ भी डॉक्टर है?
हाँ जी, वो इंग्लैंड में है, वो अभी जुलाई में आ रही है। वो तो पता नहीं कैसी होगी, मैंने उनके स्पिरिचुअलिटी को कभी डील नहीं किया, लेकिन इसकी बात उसको मैंने ये कहा था शादी से पहले। उसका नाम डॉक्टर सोनाली है। मैंने कहा सोनाली बात सुन लो, ये शादी का कोई पर्पज है? जो आपने अपने पेरेंट्स के घर में बैठकर सोफों पर बैठी हो, मूवी गई हो, या चिकन वगैरह खाया या जो भी कुछ किया है, अगर शादी होगी ना तो मुझे तुम गालियां मत निकालो, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तुम्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा 2-2.5 घंटे उसकी याद में। वो बात भी ये नहीं कि मूवी में 2 घंटे लगाने हैं, वो जमीन पर लगाने पड़ेंगे आप।
मगर सोनाली की अम्मी अबू भी बहुत अच्छे हैं।
हाँ, तो वो
इज योर फ्रेंड?
हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन वो अब मानती है, वो पहले जब शादी 2-3 दिन हुए थे तो वो मुझे कहती डैड यू आर राइट, तो ये तो मुझे नीचे बैठा लेते हैं, बेड पर बैठकर पाठ नहीं करना, मेडिटेशन नीचे बैठो। तो कहने की ये कहने प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रचार से कुछ नहीं फायदा होता। लेकिन जो भी है, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमने कभी नहीं बताया कि मेरे पास 1 लाख है या 1 मिलियन है।
लेकिन मैं उस इन चीजों से इम्प्रेस भी नहीं होती। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका पैसा आपके लिए है, मेरा पैसा मेरे लिए है, द ओनली थिंग व्हाट वी शेयर इज हस दन्ना दी प्रीत रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल व्हाट वी शेयर।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि अरफा जी मेरा और था मतलब कि अगर कोई इफ यू हैव समथिंग इनसाइट, इफ यू आर गेटिंग सम स्पिरिचुअल पावर्स, नेवर एवर डिस्क्लोज। जैसे वो परफ्यूम की शीशी होती है, अगर उसका हम ढक्कन खोल दें तो परफ्यूम उड़ जाएगा सारा, अब शीशी खाली हो जाएगी।
wow.
उसको डब्बी को बंद ही रखो लेकिन स्मेल फिर भी आएगी, वो आपके एक्शन बताएंगे। अगर हम कहें ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बहुत बहुत निचली पावर हैं जो फकीरों के पास आ जाती हैं, वो किसी
बड़ी
को लड़का
खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं अपनी वालदा को याद करती हूँ, और ये आजकल के दौर में मैं इस बात को डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहती हूँ। कहते थे कि अगर आप में कोई गुण है और आपने खड़े होकर बताया कि मेरे में ये गुण है, तो इसका मतलब है आप में वो गुण नहीं है। मजा फिर ये है कि आप बैठे हो और आपका किया हुआ काम बोले जो आपकी सूरत में। डॉक्टर साहब आज डॉक्टर साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कहीं कोई कहीं रिग्रेट करते हैं किसी चीज के लिए?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जिंदगी में गलतियां की हैं विद हिज ग्रेस बहुत पश्चाताप किया और उसने बख्श दिया है, ये पक्की बात है। क्योंकि मुझे मुझे अरफा जी जो सबसे मैं जो रिजेक्ट करता हूँ, जब हम जवान थे तो हमें ये एक दूसरे से नफरत करते, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऐसे है ऐसे है, 100% मैं ये कहता हूँ। मुझे
ये तो पॉलिटिशियंस हमें शो करते हैं,
पर हमें असर हो गया ना उसका,
पॉलिटिशियंस शो करते हैं,
असर हो गया। लेकिन आज मैं अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, वाहिगुरु की कसम, मेरे दिल में कोई जात पात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अगर मैं अब तो मैरिड हूँ, बच्चे हैं, अगर मैं खुदा ना खाता बैचलर होता ना, मैं जरूर इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में शादी करता, जो मर्जी होता, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ।
लेकिन हमारे कमलेश जी कैसे मिलती हैं आप? उनके साथ बड़े सूट करते हैं। मगर आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि ये पॉलिटिशियंस अपनी सियासत को बेचने की खातिर इंसानों के बीच में तोड़ डाल देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई रिलीजन गलत
ٹیچنگ کرتا ہو، اللہ کرے کہ ہم انسانیت کی قدر کر سکیں، آمین سم آمین. اور اگر آف کورس قدرت کا کارخانہ ہے، اس میں پولیٹیشنز نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اسلحے نے بھی بکنا ہے، جنگوں نے بھی ہونا ہے، بچوں نے بھی مرنا ہے. ان بچوں کے مرنے والے بچوں کا کوئی غم نہیں کرے گا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چپے ہیں یا ملکوں کی جو زمین ہے اس کے لیے لوگوں نے لڑتے رہنا ہے. دیٹس واٹ دی لائف از، بنانے والے کا کارخانہ. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو ایک اور زندگی ملے تو کوئی ایسی، کیا آپ اسی چیز کو ریپیٹ کرنا چاہیں گے یا ایک ڈفرنٹ زندگی گزارنا چاہیں گے؟
عرفہ جی، دو شبد ہوتے ہیں، ایک مکتی ہوتا ہے، ایک مکت ہوتا ہے. جو مکتی ہوتی ہے اس کا ہمیشہ اس کا مطلب ہے کہ دکھوں اور سکھوں سے چھٹکارا، کہ آپ جنت میں جاتے ہو یا دوزخ میں جاتے ہو، اپنے کاموں کا حساب کتاب دیتے ہو، واپس پھر آتے ہو. لیکن جو مکت ہوتا ہے وہ پھر جمن مرن سے دور ہو جاتا ہے، دیر از نو برتھ اینڈ ری برتھ. تو جب ہم اتنی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد کوئی نہیں بتائے گا، ناؤ اینڈ نیور. اسی لائف میں جو شریر کے اندر نا، دس ہیومن باڈی از دا ٹیمپل آف لیونگ گاڈ. جب محنت کرتے ہو، اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا اچھا اسٹوڈیو بنایا ہے، آپ نے کیمسٹری کی ماسٹرز کی ہے، جو کسی نے کوئی آئی ٹی کی ہے، کسی نے کچھ کی ہے، باہر محنت، اس دنیا اس لائف میں محنت کی ہے تو ڈگری مل گئی. جب آپ اندر محنت کرو گے، ہم کرتے نہیں ہیں، کر کے دیکھو، خدا کی قسم ضرور آپ کامیاب ہو گے. وہ پرماتما اللہ واہ گرو بہت رحمت ہے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم فارمیلٹیز کر رہے ہیں خالی. اگر ہم محنت کرنے ادھر بھی لگ جائیں نا، کہ میں نے جیسے، میں تو خیر نلائق ہی تھا، میں تو نقل مار کے ہوا ہوں. جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو آئی ایس آئی پی ایس افسر بنے ہیں، اتنی اتنی محنت کرتے ہیں، اگر وہ اندر بھی کر لیں نا، سونے پر سہاگا، وہ اندر بھی اتنی پاورز آ جائیں گی، وہ سامنے آنکھ کوئی نہیں ملا سکتا آپ سے.
میں ڈاکٹر صاحب، اس ایج میں جب میں اپنے کالج اینڈ اسکول ہڈ کے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہوں، تو آپ یقین کریں درمیان کی عمر بالکل غائب ہو جاتی ہے. جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہماری شرارتیں بھی وہی اسی زمانے کی ہو جاتی ہیں جب ہم کالج یونیورسٹی میں تھے. آپ جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کیا اندر کا بچہ ایک بار پھر جاگ جاتا ہے، یا آپ ہوتے ہیں ویری سیریس اینڈ پیسے والا اور دس مین؟
عرفہ جی، آنیسٹلی بات یہ ہے کہ اب میں جو بھی پروگرام کرتا ہوں، میرے سارے فرینڈ دیکھتے ہیں، تو سارے ون ٹو آل، اور کبھی نہ کبھی میرے خیال ہر مہینے دو ویک کے بعد وہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دنیا کی بات چھوڑو، ہماری یہ پرابلم ہے، کچھ اندر کی بات بتاؤ. کیسے؟ کیونکہ جیسی کمپنی ہوگی اس کا اثر ہوگا. جب وہ بات کہیں اور کریں گے، میں گھما پھرا کر وہاں لے جاتا ہوں، تو الٹیمیٹلی ان کو لگتا ہے، کیونکہ اب انہوں نے بھی کتنے، میرے سیونٹیز کے ہو گئے، انہوں نے دیکھو کتنے کتنے بڑے آفیسرز ہیں، کوئی آئی اے ایس ہے، کوئی آئی پی ایس ہے، کوئی منسٹر.
ڈاکٹر صاحب، اگر اس عمر میں آ کے آپ ہر چیز سے منع کرتے ہیں، آپ نے اپنی، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو آئی ول بی ہپوکریٹ. شرارتیں بھی کی ہوئی ہیں، رچ کے شرارتیں کی ہوئی ہیں. اور اگر آج کے ینگ بچے کو میں کہوں نہیں تم میرے جیسا سیریس ہو جاؤ، تو غدر ہے نا.
لیٹ دم انجوائے ہم نے کہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی ٹائم نکالو نا، سارا کچھ انجوائے کرو، اس میں پریورٹی کچھ نہ کچھ گھر میں بھی دو نا. ہر وقت امیتابھ بچن کے شو دیکھنے کے لیے کون بڑے گا کروڑ پتی، وہ جو سونا چاندی آپ کا ہے وہ دیکھو دیکھو، لیکن 15-20 منٹ ایمانداری سے اس کے لیے بھی تو نکالو نا.
جس مگر بھائی، ساز و آواز سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آپ نے ٹائم ضرور نکالنا ہے. 7:70 AM ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com www.eelectronic.alphawaz. وی نیڈ یور فیڈ بیک ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو. مجھے زندگی میں لوگوں کو پیار دیتے گزر گئی، اور شاید میں جتنا پیار مجھے ملا ہے، میں اس کو اتنا، جتنا شکر کروں اللہ کا اتنا کم ہے. آپ کا میں نے لاسٹ ویک کا جو پروگرام سنا تھا، مجھے اتنا اچھا لگا تھا، تو میں نے کہا تھا وائی ناٹ ٹو ایکسپلور ڈاکٹر صاحب's پرسنالٹی. کملیش جی بہت خوبصورت ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بیٹر ہاف، آئی تھنک سو. ڈاکٹر صاحب کو سنبھال کے وہی چل رہی ہیں، مانے نہ مانے. ایم آئی رائٹ؟
بالکل ٹھیک ہے، غلط رستے پر نہیں چلنے دیتے ان کو. آنکھ کی اندر سے بھی بہت، دیکھو وہ بھی محنت کرتے ہیں،
اندر کی آنکھ ہے،
اندر کی آنکھ ہے ان کو. پتا کہ میں عرفہ جی کے ساتھ وہاں پر ریڈیو اسٹیشن پر جا رہا ہوں، تو کیا ہو سکتا ہے ان کو پتا کہ کہاں میری ادھر، تو میں ٹوئلٹ تو نہیں کر رہا، تو ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں، جو اگر تھوڑی سی من کے پیچھے لگتے ہیں، کیونکہ دشمن تو ہمارا مائنڈ ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں، مائنڈ ہے شرارت کرتا.
شی از سچ اے سویٹ اینڈ اے ہمبل پرسن. آئی ایم سو سوری دیٹ آج وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پائیں. انشاءاللہ ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ضرور. بس اللہ کرے کہ لوگوں کو ہم ان کا اندر دیکھ سکیں اور کسی کا اچھا دیکھ کے ہم اس کو فالو کر سکیں. اگر اس میں وہ گن ہے تو اللہ کرے کہ میرے میں بھی وہ گن آئیں ضرور. ہم سب کے ویکنیسز ہوتے ہیں, کمزوریاں بھی ہیں. اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کے لیے ہمیں معاف کرے اور ہم کو بہتر کرنے کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.
ایک میں لاسٹ میں عرفہ جی آپ کی آگے سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمیشہ میری طرف سے ہے کہ اچھی کرنی کرو کبیرا, مت کرنا کچھ کالا, ہزار آنکھ سے دیکھ رہا ہے تجھ کو دیکھنے والا.
کیا بات,
یہ سوچ کر رکھو کہ کوئی بھی کام کرتے لوگوں کو بیوقوف بناتے, اس کو نہیں, اس سے ڈرو, اس سے پیار کرو. تھینک یو.
جھوٹ بولنا ہے نا تو آپ ایک ذات جس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کو ریٹرن دینا, ہم اس سے وی کین ناٹ ہائیڈ اینی تھنگ فرام دیٹ سپریم پاور. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کو, بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
کملیش جی کا بہت